ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो रही है और रोजमर्रा के सामान से लेकर ईंधन की कीमतों ने जोर पकड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा स्फीतिक दबाव भी बना हुआ है। आंशिक रूप से कम करने वाले उपायों में से एक है ईंधन उत्पादक शुल्क को अस्थायी रूप से आधा करना, मगर अब यह व्यवस्था के समाप्त होने का समय आ रहा है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलियाई मोटर चालकों को अधिक कीमतों के लिए तैयार होना होगा। पिछले कुछ महीनों से ऑस्ट्रेलिया में उच्च ईंधन की कीमतों में ईंधन उत्पादक शुल्क में कटौती के कारण थोड़ी कमी आई है। पिछली सरकार द्वारा लागू किए गए इसमें 44.2 सेंट प्रति लीटर के सामान्य उत्पादक दर को घटाकर 22.1 सेंट कर दिया है, लेकिन कटौती केवल 28 सितंबर तक चलने वाली थी और नई फेडरल सरकार का कहना है वे इसे बदलने वाली नहीं है। ग्रैटन इंस्टीट्यूट की सिटी प्रोग्राम डायरेक्टर मैरियन टेरेल कहती हैं,
It's very difficult to predict. One of the things about the price of oil is that it's very volatile. So we're noticing it a lot at the moment, but it's always quite a volatile thing.
फेडरल सरकार का कहना है कि कर को आधा करने में अब तक $3 बिलियन खर्च हुए हैं और ये एक ऐसा बोझ है जिसे बजट अब और नहीं झेल सकता। जहां तक करों की बात आती है, मैरियन टेरल का कहना है कि ईंधन उत्पादक शुल्क समझ में आता है।
Because we don't have an economy-wide carbon tax, having more expensive, making it a little more expensive to burn fossil fuels operates a bit like as if it was a carbon tax in that it does discourage driving a little bit. So that is one reason why fuel excise is probably quite a good tax to have. And the other is, even though we may grumble and complain about it, people are not actually that responsive to the change in price. They don't change how much fuel they use all that much, certainly in the near term. And so that's, economists would tend to think that that's quite an efficient tax.
अब ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि एक्साइज कट के खत्म होने के बाद ईंधन की कीमतों का क्या होगा। डॉक्टर लुरियन डे मेलो मैक्वायरी यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के एक सीनियर लेक्चरर हैं। वो कहते हैं,
If crude oil remains under $100 a barrel, I think, you know, petrol prices are going to remain low. But the biggest worry is diesel. The price of diesel is, you know, around $2.20, $2.19, I mean, around $2.30 as well at some fuel stations. So I think, you know, to have a benefit at the end of September, you know, if oil prices come down, but we also want the diesel price to come down as well, because, you know, we might pay less at the barrels or to fill up our cars, but a high diesel price is going to have far more sort of damaging impacts on the economy.
ऐसा इसलिए है क्योंकि डीजल से चलने वाले वाहन आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, क्योंकि इसी से दुकानों को सामान पहुंचता है। उच्च ईंधन लागत के चलते वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। डॉक्टर डिमेलो कहते हैं कि एक लंबी अवधि के तौर पे देखा जाए तो ये अच्छी और बुरी खबरों का मिश्रण है।
We could try and secure more supplies. I mean, you have to keep in mind that Australia imports 90% of its fuel. Right? It's trying to build these storage terminals and whatnot, or convert these old refineries in Australia into storage terminals. But we don't have that massive capacity, you know, to buy and store fuel when it's cheap. The good thing for Australia is it has a diversity of supply, you know. Even though we kind of concentrate mostly on Singapore, South Korea, Malaysia, I mean, it's spread a little bit. We also get fuel from the US as well on the odd occasion, and from India as well.
डॉक्टर डिमेलो का कहना है कि उपभोक्ता सबसे अच्छा सौदा पाने के लिए ईंधन की कीमतों की निगरानी और तुलना करने वाले मोबाइल फोन ऐप का उपयोग कर सकते हैं। टोलूना एक ग्राहक अनुसंधान फर्म है जिसने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन जारी किया था, जिसमें पाया गया है कि 33% लोगों ने मुद्रा स्फीति और मौजूदा पेट्रोल की कीमतों के कारण आसमान छूती लागत को कम करने के लिए वाहन का उपयोग कम कर दिया है। इस सर्वेक्षण में 4 प्रतिभागियों में से एक ने कहा कि वे अपनी अगली खरीद के लिए इलेक्ट्रिक कार पर विचार करेंगे। SBS न्यूज़ की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।